दिसंबर को हम विकलांग दिवस के रूप में मनाते हैं। लोगों की प्रायः ये सोच होती है कि दृष्टिबाधित व्यक्ति या कोई भी दिव्यांग व्यक्ति केवल सीमित पदों तक ही कार्य करते हैं, लेकिन आज वक्त बदल गया है। हर अंगहीन, हर दृष्टिबाधित, या मैं कहूँ जो भी हो, वो उच्च से उच्च पदों पर भी आसीन है। आइए आज मैं आपको इसी विषय पर एक लेख सुनाती हूँ। महिला मंच से एक स्तंभ, अंधेरे के आगे है रोशनी, मिसाल गौरी सेन। रक्षा मंत्रालय में पर्सनल असिस्टेंट के पद पर कार्यरत गौरी सेन के लिए यह मुकाम हासिल करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वह जन्मजात दृष्टिबाधिता की समस्या से पीड़ित थी। रास्ते में कई रुकावटें आईं, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। आखिर उन्हें उनकी मंजिल कैसे मिली, जानते हैं उन्हीं की जुबानी। जब मैं अपने पुराने दिनों को याद करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बचपन आम बच्चों से बहुत अलग था। मैं मूलतः लखनऊ की रहने वाली हूँ। मेरे पिता एक निजी कंपनी में जॉब करते थे। जैसा कि माँ बताती हैं कि जन्म के बाद मेरी आंखें नीली नजर आ रही थी और रंग भी गोरा था। उस समय लोगों को यही लगा कि बच्ची बहुत खूबसूरत है, लेकिन तीसरे दिन कॉर्निया पर सफेद धब्बे नजर आने लगे और डॉक्टर ने बताया कि यह कॉन्जेनिटल ग्लूकोमा की समस्या है। मेरे माता पिता के लिए यह बेहद चिंताजनक थी, इसलिए वे इलाज की कोशिश में जुट गए, उपचार का अथक प्रयास। माँ जब मुझे हॉस्पिटल लेकर जाती, तो वहां कुछ ऐसे लोग भी आते थे जिनके दो या तीन बच्चों को दृष्टिबाधिता की समस्या होती थी। यह देखकर उनका मन सशंकित हो गया कि उन्होंने यह तो किया कि अब वह केवल मेरी देखभाल पर ही ध्यान देंगी। इसी वजह से मैं उनकी इकलौती संतान हूँ। उन दिनों दिल्ली में मेरे ताऊ जी रहते थे। एम्स में मेरा उपचार कराने के लिए जब मेरे पेरेंट्स दिल्ली आते, तो हम लोग उन्हीं के घर पर रुकते थे। 3 माह से 5 साल की उम्र तक मैं 10 ऑपरेशन झेल चुकी थी। आखिरी सर्जरी के बाद मेरा रेटिना डिटैच हो गया। उससे पहले मुझे रोशनी और अंधेरे का आभास होता था, लेकिन ऑपरेशन के बाद मेरी दृष्टि पूरी तरह नष्ट हो गई। डॉक्टर ने भी यही कहा कि अब कॉर्निया ट्रांसप्लांट करना असंभव है। इसलिए हम लोग दिल्ली से लखनऊ वापस लौट आए। सीखने का सिलसिला। 5 साल की उम्र से ही मैं ब्रेल और म्यूजिक सीखने के लिए एक दृष्टिबाधित दंपति के घर जाती थी, पर यह एक्टिविटी मेरे लिए पर्याप्त नहीं थी। मैं आम बच्चों की तरह स्कूल जाना चाहती थी। यह 1991 की बात है, तब वहां स्पेशल बच्चों के लिए अलग से स्कूल की कोई व्यवस्था नहीं थी। फिर मुझे सिखाने वाली आंटी ने मेरे माता पिता को बताया कि दिल्ली में दृष्टिबाधित लड़कियों के लिए एक बहुत अच्छा आवासीय विद्यालय है। चूंकि वहीं से पढ़ाई पूरी करने के बाद वह आंटी बैंक में जॉब कर रही थी, तो मेरे माता पिता के मन में यह भरोसा पैदा हुआ कि वे बेहतर भविष्य के लिए हमें भी अपनी बेटी को वहीं भेजना चाहिए। फिर मेरे माता पिता मुझे साथ लेकर दिल्ली आए। चूंकि उस उम्र की जरूरत भर मैं ब्रेल लिपि में पढ़ना लिखना भी सीख चुकी थी, इसलिए न्यू राजेंद्र नगर स्थित रेजिडेंशियल ब्लाइंड स्कूल में नर्सरी के बजाय सीधे पहली कक्षा में मेरा एडमिशन हो गया। हमारे ताऊ जी और बुआ का परिवार दिल्ली में ही था और वे लोग मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मुझे अब भी याद है, तब मेरी उम्र मात्र 6 साल थी। जब पहली बार पापा मुझे छोड़कर गए थे, तब मैं बहुत रो रही थी। घर से दूर वहां के नए माहौल के साथ एडजस्ट करने में मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। फिर धीरे धीरे सबसे मेरी दोस्ती हो गई। मैं शुरू से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थी। बदल गई दुनिया। जब मैंने 12वीं की परीक्षा पास कर ली, तो मुझे हॉस्का स्थित सेंटर फॉर द ब्लाइंड वीमेन के बारे में मालूम हुआ। कुछ सहेलियों के साथ मिलकर वहां मैंने समर कोर्स ज्वाइन कर लिया। अब तक मैं आवासीय विद्यालय के सुरक्षित कैंपस में रहती थी, लेकिन 12वीं की परीक्षा पास करते ही मुझे बाहरी दुनिया में जाकर हर तरह के लोगों के साथ मिलजुल कर काम करना था। यह हमारी जैसी लड़कियों के लिए बड़ी चुनौती होती है, इसलिए मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर द्वारा हमें वाइट स्टिक की मदद से सड़क पर चलने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए खुद सफर करने की भी ट्रेनिंग दी गई। इस तरह मैं जल्द ही बसों में सफर करना सीख गई। उसके बाद मिरांडा हाउस में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के साथ मेरा एडमिशन हो गया, लेकिन कॉलेज कैंपस का हॉस्टल लेने के बजाय मैंने ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड यानी AICB के हॉस्टल में रहने का निर्णय लिया था। यह 2004 की बात है। हमारा हॉस्टल रोहिणी में था, वहां से 2 बसें बदलकर मैं कॉलेज जाती थी। ब्लाइंड हॉस्टल में हमें कंप्यूटर और सेल्फ डिफेंस के लिए कोरियन मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग दी जाती थी। कॉलेज से मैं नोट्स को रिकॉर्ड करके ले आती और उससे अपनी सुविधा अनुसार ब्रेल में नए नोट्स तैयार करती। उसी दौरान पापा को सीवियर अस्थमा हो गया था, इसलिए ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैं लखनऊ लौट आई। मैं कुछ काम करना चाहती थी, लेकिन उस वक्त मेरे पास कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं थी। उन दिनों शॉर्ट हैंड और टाइपिंग की जरूरत होती थी। मैंने 2008 में स्टेनोग्राफी का कोर्स पूरा किया, जो मेरे लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ विभागों में LDC पदों के लिए आवेदन किया, फिर लखनऊ में रीजनल फूड कंट्रोलर विभाग में नवंबर 2008 में मुझे पहली जॉब मिली। उसी दौरान DRDO की वैकेंसी आई तो वहां अप्लाई किया और परीक्षा में पास हो गई। फिर सितंबर 2009 में मैंने वहां ज्वाइन किया। कुछ नैतिक जिम्मेदारियां। नौकरी में आने के बाद भी मैं ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड से निरंतर संपर्क में रही। वहां से प्रकाशित होने वाली ब्रेल पत्रिका में अक्सर मेरी रचनाएं प्रकाशित होती थी। जब बेटा 2 साल का हो गया तो मुझे ब्रेल पत्रिका जिज्ञासा के संपादन की जिम्मेदारी सौंपी गई। मैं देश के विभिन्न हिस्सों में दृष्टि बाधित स्त्रियों और बच्चों के लिए वर्कशॉप का आयोजन करवाती हूँ। फिलहाल मैं AICB के लिए बतौर सचिव काम कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अपने ही जैसे डिफरेंटली एबल लोगों की मदद करना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। छोटा सा संसार हमारा। जब मैं ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड से शॉर्ट हैंड सीख रही थी तो वहां मोहम्मद परवेज से मेरी मुलाकात हुई। उन्हें भी दृष्टि बाधिता की समस्या है, लेकिन वे जन्मजात ब्लाइंड नहीं है, बल्कि उन्हें रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा नामक समस्या है। इसमें रेटिना पर पिगमेंटेशन हो जाता है। ग्रेजुएशन के बाद धीरे धीरे उनकी आंखों की दृष्टि नष्ट हो गई। जब भी जरूरत होती थी सीखने में मैं उनकी मदद करती थी। उस दौरान हमारे बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। हम दोनों को ऐसा लगा कि हम एक दूसरे के साथ ताउम्र खुश रह सकते हैं। स्वाभाविक रूप से हमारी शादी में दोनों परिवारों के बीच असहमति थी। मेरी भी एक शर्त थी कि शादी के बाद मैं धर्म परिवर्तन नहीं करूंगी। मेरी ससुराल वाले इस मामले में बहुत उदार हैं, उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। इस तरह सितंबर 2011 में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हमने कोर्ट में शादी कर ली। मेरे पति परवेज बैंक में सीनियर मैनेजर हैं। मेरा बेटा और 6 साल का हो चुका है। यह मेरी खुशकिस्मती है कि वह पूर्णतः स्वस्थ है। माँ बनने के बाद निश्चित रूप से मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। उसे पढ़ाने के लिए मैं उसकी सारी किताबों को ब्रेल में टाइप करवाती हूँ। हम दोनों उसके साथ ब्रेल में लूडो और चेस जैसे बोर्ड गेम्स खेलते हैं। धीरे धीरे वह समझने लगा है कि उसके पेरेंट्स देख नहीं सकते। हमारे परिवार में हर त्योहार उल्लास के साथ मनाया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद यह जिंदगी बहुत खूबसूरत है। हमें इसके हर पल को जी भर कर जीना चाहिए। टू ऑल ऑफ यू बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को विकलांग दिवस की। हैप्पी डिसेबल्ड डे। थैंक यू सो मच।
इस ऑडियो को IVR पर पसंद कर इसे आगे भेजना चाहते हैं तो 5 दबाएं। इसका ऑडियो ID नंबर आपको SMS किया जाएगा और अगर आप इनेबल वाणी ऐप को इस्तेमाल कर रहे हैं तो पसंद किए गए ऑडियो को डाउनलोड करें और फॉरवर्ड करें।